प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने परिवारों के साथ कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रहते हुए आनंदित हैं। फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से आप सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं अपने उन नए मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और उनका भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों के पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि हम मनुष्य जो पाप में गिरे हुए थे, अन्य जातियों में से थे, यहूदियों से अलग थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा हमें एक कर दिया, हमें एक नई सृष्टि, नया मानव बना दिया, हमें एक देह में जोड़ दिया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए, जिसे आप बड़ी दया के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन में देते हैं। यद्यपि कि हम दुर्बल और कमजोर लोग हैं, हमें कुछ भी अच्छी और भली बातें नहीं पाई जाती है, इसके बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखते हैं और इस धरती पर आपने अब तक हम सबको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। इसलिए नहीं कि हम अच्छे और भले लोग हैं, परंतु इसलिए कि आपका अनुग्रह हम पर। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है आज के वचन के लिए। जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपने बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज का वचन हमें से प्रत्येक के लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, अपने जीवन से हताश होकर खत्म करना चाहते हैं। प्रभु, उन पर अनुग्रह करें ताकि वे इस बात को समझ सके कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें रचा है। आप उनके पापों से, उनके बंधनों से छुटकारा प्रदान करें। आज के वचन से आप बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम इफिसियों की पत्री 3 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। आज का विषय है कलीसिया एक भेद है, भेद का अनावरण, भेद की परिभाषा, सामर्थ्य और ज्ञान की प्रार्थना। मित्रों, इस पत्री के शिक्षा संबंधित भाग का यह अंतिम अध्याय है। हमने देखा है कि कलीसिया एक देह है, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। अब हम देखेंगे कि कलीसिया एक भेद है। हम कहते हैं कि कलीसिया एक भेद है, इसके संबंध में मैं कुछ आरंभिक बातें बताना चाहता हूँ। कलीसिया को एक भेद कहने में कुछ भ्रांतियां रही हैं। यहाँ भेद शब्द का अर्थ आज के जासूसी उपन्यास जैसा ना समझें। यहाँ भेद का अर्थ है कि जो बात पहले गुप्त थी वह अब प्रकट की गई है। इस संदर्भ में कलीसिया पुराने नियम में प्रकट नहीं हुई थी, परंतु नए नियम में प्रकट हो गई है। मोफत भेद का अनुवाद इस प्रकार से करते हैं, परमेश्वर की गुप्त बात। बेमौत इसे सत्य कहते हैं, परंतु मुझे परमेश्वर की गुप्त बात अधिक अच्छा लगता है। परमेश्वर की गुप्त बात वह है जो उसने समय के एक पक्ष तक प्रकट नहीं की थी, परंतु अब वह उसे प्रकट करना चाहता है। जैसा मैं पहले अध्याय के एक अध्ययन में कह चुका हूं कि भेद का अर्थ जासूसी उपन्यास जैसा नहीं है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया के भेद के संबंध में 2 मुख्य विचार प्रचलित हैं। मैं तो कहूंगा कि ये दोनों विचार मेरे लिए ही भेद की बात है। एक समूह तो पौलुस के स्पष्ट कथन को अनदेखा करता है। पौलुस ने कहा कि कलीसिया पुराने नियम का प्रकाशन नहीं है, वे कलीसिया को इसराइल का उत्तर पक्ष कहते हैं, इसे वाचा का विचार भी कहते हैं। वे इसराइल से की गई परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाओं को कलीसिया के लिए मानते हैं। वर्षों पूर्व डॉक्टर हेरी आयरनसाइड ने एक बाइबल दिखाई जिसमें पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में कुछ अध्यायों का शीर्षक था कलीसिया के लिए आशीषें, अन्य अध्यायों का शीर्षक था इसराइल के लिए श्राप। यह बड़ी ही रोचक बात है कि कलीसिया ने तो आशीषें ले ली और इसराइल के लिए श्राप छोड़ दिए, जबकि सच तो यह है कि आशीषें और श्राप दोनों ही इसराइल के लिए थे। विचारकों का दूसरा समूह पौलुस की इस बात पर आवश्यकता से अधिक बल देता है जब वह कहता है, उसने मुझ पर अपना भेद प्रकट किया और मेरा ज्ञान मसीह का भेद है, और वे इस भेद को पौलुस का विशेष दर्शन मानते हैं। इसे वे अंग्रेजी में हाइपर डिस्पेंसेशनलिज्म कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक हानिकारक अभ्यास आरंभ हो गया कि कलीसिया को पेंतीकोस्त का उत्तरकालीन माना जाने लगा और कलीसिया के आरंभ की अनेक तिथियां प्रस्तावित की गई जिनमें यदि एक तिथि सही न बैठे तो दूसरी मान ली जाती है। ऊंचे ज्ञान का यह दावा आत्मिक घमंड को बढ़ावा देता है। क्या मैं कह सकता हूं कि कलीसिया पुराने नियम में प्रकट नहीं हुई थी, और जब प्रकट हुई तो इसका प्रकाशन पौलुस तक ही सीमित नहीं था। मेरे एक अध्यापक तो कलीसिया को अदन की वाटिका में ही स्थापित मानते थे, परंतु सच तो यह है कि कलीसिया पुराने नियम में थी ही नहीं। दूसरी ओर यह भी मानना पड़ेगा कि पेंतीकोस्त के दिन कुछ तो हुआ था। उस दिन पवित्र आत्मा ने विश्वासियों की देह बनाना आरंभ कर दिया था और उसका यह निर्माण कार्य उस दिन तक चलता रहेगा जब तक कि वह कलीसिया को संसार से उठा न लेगा। हम मुक्ति के दिन तक परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मुहर के अधीन है। उस दिन तक जब तक हम यहां से उठाकर प्रभु के समक्ष प्रस्तुत न किए जाएं। पेंतीकोस्त के दिन कलीसिया का जन्म दिवस था। मेरे मित्रों, आइए अब हम देखें भेद की व्याख्या। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1-2 पद में लिखा है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, मैं इसका अनुवाद देता हूँ, इस कारण मैं पौलुस तुम अन्य जातियों के निमित्त मसीह यीशु का बंदी। यदि ऐसा हो तो मान लीजिए कि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुना है जो तुम्हें दिया गया है। पौलुस अपनी वर्तमान स्थिति की चर्चा करता है, वह बंदी हुआ कि अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाया। अब अन्य जातियों को सौभाग्य प्रदान किया गया है जिसकी चर्चा पौलुस ने पिछले अध्याय में की थी। वे तो जो आशा से रहित थे, परमेश्वर से रहित, परदेशी थे, दूर थे, अब मसीह में निकट लाए गए हैं। इस कारण पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है, परंतु प्रार्थना करने से पूर्व वह इस भेद की बात को बताना चाहता है। तब वह पद 14 में फिर अपना विचार व्यक्त करता है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। पद 1 और पद 14 के बीच की बातें प्रासंगिक अभिव्यक्तियां हैं। प्रार्थना करने से पूर्व व भेद की बात बताना चाहता है। लिखा है, यदि प्रासंगिक अभिव्यक्तियों का आरंभ करता है, वह मानकर चल रहा है कि उन्होंने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना। पौलुस परमेश्वर की योजना और प्रबंध की चर्चा करता है जिसके अनुसार परमेश्वर ने उसे बुलाया और अन्य जातियों में भेजा। अन्य प्रेरितों की तुलना में पौलुस की सेवा अलग थी और विशेष ही थी। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस लिखता है, इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। संदेश तो भिन्न नहीं था, परंतु जिनमें सुसमाचार सुनाना था वे लोग अलग अलग समुदाय के थे। पौलुस अन्य जातियों में गया और उनसे कहा, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। फिलिपी नगर के बंदीगृह अधीक्षक से पौलुस ने कहा था, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पत्रस और पौलुस दोनों का यही संदेश था, परंतु उसके श्रोतागण अलग अलग समुदाय के थे। मेरे प्रियो, अब एक नई बात हो रही है। यह पुराने नियम के युग से सर्वथा भिन्न है। जब पौलुस एक फरीसी था और व्यवस्था के अधीन था, तब अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए नहीं गया। वह उस समय एक अलग युग में था। अब पौलुस एक अलग प्रबंध में है। वह अन्य जातियों में प्रचारक है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर के उद्धार की रीति बदल गई है। व्यवस्था पालन से किसी को उद्धार नहीं मिला था, परंतु यह जानकर कि वह परमेश्वर की महिमा से रहित है, लहू की बलि चढ़ाई गई जो प्रभु यीशु की ओर संकेत करती थी। अब पौलुस इस नए प्रबंध की चर्चा करता है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। प्रकाशन के द्वारा, वे जो प्रकाशन को केवल पौलुस तक ही सीमित रखते हैं, पौलुस के इस कथन को कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, यह मानते हैं कि केवल पौलुस ही इस भेद को जानता था। परंतु पद 5 में पौलुस स्पष्ट करता है कि इस भेद को सब प्रेरित जानते थे। यह प्रकाशन पौलुस के मन परिवर्तन से आरंभ हुआ जब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि कलीसिया को सताने में वह वास्तव में उसको ही सता रहा था। कलीसिया मसीह की देह है। पौलुस समझ गया था कि परमेश्वर एक नया काम कर रहा था। पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया का अस्तित्व आरंभ हुआ था। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहता हूं कि यह भेद परमेश्वर की गुप्त बात पुराने नियम में प्रकट नहीं थी, अतः मनुष्य इससे अनभिज्ञ था। यह भेद अब नए नियम में प्रकट किया गया है। यह शब्द 27 बार नए नियम में आया है और 11 प्रकार के भेदों का संदर्भ देता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस उस युग के अन्य धर्मों की तुलना में मसीही विश्वास का अंतर दर्शा रहा है। उस युग में अनेक धर्म थे और उनमें देह को पीड़ा दी जाती थी। नव दीक्षित को चेतावनी दी जाती थी कि वह उस धर्म का भेद किसी पर प्रकट नहीं करेगा। यह नव दीक्षित पर प्रकट भेद था जो छिपा हुआ नहीं था और समझने के लिए असंभव भी नहीं था। एक आम मनुष्य के लिए वह धर्म भेद के वास्तविक अर्थ में एक रहस्य ही था। इसके विपरीत पौलुस कहता है कि यदि वह सुसमाचार का प्रचार ना करे तो उस पर हाय। आज हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। हमें सुसमाचार का संदेश सुनाना है। सुसमाचार को किसी स्थान में गुप्त नहीं रखना है। यह सुसमाचार है जिसकी घोषणा छत पर से करना है। पौलुस भेद शब्द का उपयोग इस पत्री के आरंभ में भी करता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में वह कहता है, उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 और 15 पद में वह इस भेद को समझाता है। यह भेद है कि प्रभु यीशु मरकर जी उठा और यहूदियों तथा अन्य जातियों के, पृथ्वी की सब जातियों की देह का सिर है। पुराने नियम में यह बात प्रकट नहीं थी। रोमियो के पत्र 16 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस इसी बात को इस प्रकार से कहता है, और अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। कुलुसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 26 पद में वह फिर कहता है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। मेरे मित्रों, मैं तो कहूंगा कि जो कलीसिया को पुराने नियम में मानते हैं प्रभु यीशु का स्थान छीन रहे हैं। वे ऐसी बात कहते हैं जो प्रभु यीशु ने स्वयं नहीं कही। उनका व्यवहार ऐसा प्रकट करता है कि जो वे जानते हैं परमेश्वर स्वयं नहीं जानता। भेद का अर्थ है पुराने नियम में अप्रगट बात, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रकट नहीं किया, इसलिए वह तब थी ही नहीं। आइए अब हम देखें भेद की परिभाषा। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साक्षी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। पौलुस यहाँ निश्चय ही स्पष्ट कर रहा है कि यह भेद केवल उसी पर प्रकट नहीं किया गया था। अब वह स्पष्ट करता है कि भेद से उसका अभिप्राय क्या है। अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों और कलीसिया के प्रेरितों तथा भविष्यद्वक्ताओं में महान अंतर है। पुराने नियम में कलीसिया के बारे में किसी को प्रकाशन प्राप्त नहीं था, अब यह पवित्र प्रेरित पर प्रकट किया गया है। वे पवित्र इसलिए हैं कि वे इस पद पर परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ये भविष्यद्वक्ता निश्चय ही नए नियम के भविष्यद्वक्ता हैं। आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा इस भेद का शिक्षक है। प्रभु यीशु ने शिष्यों से सहायक भेजने की प्रतिज्ञा की थी, तो प्रतिज्ञा इसी बात की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 पद में यीशु ने कहा, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे मित्रों, अब यह भेद वास्तव में है क्या? यह अन्य जातियों का उद्धार पाना नहीं है। पुराना नियम अन्य जातियों के उद्धार की चर्चा कर चुका है। यशाया की पुस्तक 11 अध्याय उसके 10 पद में देखिए, उस समय ईशाई की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। यशाया 60 उसके 3 पद में लिखा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यशाया 42 के 6 में लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। जकरिया भी यही बात कहता है, जकरिया 2 के 11 पद में, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। मलाकी 1 उसके 11 पद में भी देखिए, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर एक कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अतः अब जब भेद की बात अन्य जातियों का उद्धार नहीं है तो यह क्या है? ध्यान पूर्वक देखें, भेद यह है कि अन्य जातियां और इसराइल बराबर के स्थान पर रखे गए। मसीह यीशु में विश्वास करके वे एक नई देह कलीसिया में लाए गए। एक नई देह का सिर मसीह है। इस कारण मानव जी के 3 भाग हो गए हैं। आदम से अब्राहम तक 2000 वर्षों से अधिक सब मनुष्य अन्य जाति थे। अब्राहम से प्रभु यीशु के आगमन तक 2000 वर्ष सब लोग या तो यहूदी थे या अन्य जाति थे। पेंतीकोस्त के दिन से कलीसिया के उठाए जाने तक 2000 वर्षों से अधिक यहूदी, अन्य जाति और कलीसिया, ये तीन भाग हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 32 पद में पौलुस इसी विभाजन की चर्चा करता है। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। यहाँ पौलुस संपूर्ण मानव जाति के संदर्भ में कह रहा है। मेरे मित्रों, पुराने नियम में कलीसिया के प्रतीक हैं, परंतु वहां कलीसिया वास्तव में नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 18 पद में प्रभु यीशु ने कहा था कि वह चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाएगा। वह भविष्य की बात थी। कलीसिया का आरंभ पेंतिकोस्त के दिन हुआ था। उस समय प्रभु यीशु स्वर्ग लौट गया था। यह कहना कि कलीसिया पेंतिकोस्त के पूर्व अस्तित्व में आ गई थी, दो जुड़वा कलीसियाओं का विचार प्रस्तुत करता है, एक यहूदी कलीसिया और एक अन्य जाति कलीसिया। यह सच है कि आरंभ में कलीसिया पूर्व रूप से यहूदी विश्वासियों की थी, परंतु अन्य जातियों के विश्वास में आ जाने पर परिवर्तन का समय आया। कलीसिया यहूदियों और अन्य जातियों की एक ही देह है, जिसका सिर प्रभु यीशु है। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय के 7 पद में लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मेरे मित्रों, भेद के ज्ञान के कारण और अन्य जातियों का प्रेरित होने के कारण पौलुस का स्थान अन्यों से बड़ा नहीं था। वह केवल एक दास था। यह परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान ही था कि वह शाउल से मन फिराकर पौलुस बना, जो प्रभु यीशु का बंदी था। शाउल एक अभिमानी फरीसी था। वह एक समूह से निकलकर दूसरे समूह में लाया गया था। वह मसीह की देह का अंग बन गया था। जो कुछ हुआ था वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ था। पौलुस में एक प्रेरित का सामर्थ्य और वरदान दोनों थे। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। आज हम कलीसिया के भेद या युग या प्रबंध में वास करते हैं। कलीसिया अनुग्रह का सुसमाचार है जो युगों से सब वस्तुओं के सृजनहार परमेश्वर में छिपी हुई थी। मेरे मित्रों, अब भी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट नहीं की है। यह एक कारण है मैं स्वर्ग की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप सोचते हैं कि मुझे अधिक ज्ञान नहीं है तो आप सही हैं। स्वर्ग में जाने के बाद मैं बहुत सी बातें सीखना आरंभ करूंगा। यह सच है कि परमेश्वर ने हमें अधिक जानकारी नहीं दी है। यह आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं दी है। उदाहरण के लिए, उसने परमाणु के बारे में नहीं बताया था। उसने पृथ्वी के गर्भ में गड़े हीरों के बारे में नहीं बताया था। उसने बहुत सी बातें अपने तक ही सीमित रखी थी। वह मनुष्य की खोज करने की अनुमति देता है, परंतु कुछ बातें मनुष्य केवल प्रकाशन द्वारा ही जान सकता है। इसी अर्थ में कलीसिया भी एक भेद की बात थी। पद 8 में पौलुस स्वयं को पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा कहता है। पौलुस सदैव नीचे का स्थान लेता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय उसके 9 पद में वह कहता है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 12 और 13 पद में वह कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझ कर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। पौलुस के जीवन में महान क्रांति आई थी। वह अन्य जातियों में प्रभु यीशु के अथाह धन के प्रचार के लिए चुना गया था। यह कैसी बड़ी और अद्भुत बात है। सब पर यह बात प्रकाशित करूं। यह भेद वाद विवाद का विषय नहीं, प्रचार का विषय है। पौलुस को सब पर इस भेद के प्रबंध को प्रकट करना था। हम इफिसियों के पत्री 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। इस भेद का एक और उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। सब सृजित बुद्धिजीवी कलीसिया से परमेश्वर के ज्ञान की बातें सीखते हैं। वे हम पर परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन बहुतायत से होता ही नहीं देखते, परमेश्वर का ज्ञान भी उन पर प्रकट किया जाता है। इफिसियों के पत्री 3 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हम अन्य जाति और सताने हारा पौलुस दोनों को परमेश्वर के समक्ष विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और उसके निकट आने का हियाव है। यह सब प्रभु यीशु में संभव किया गया है। आगे इफिसियों 3:13 में लिखा है, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। वह कहता है, मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। जी हाँ, भेद के महान लक्ष्यों के कारण पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित होने के कारण बंदी गृह के कष्ट उठाने के लिए तैयार है। वह नहीं चाहता था कि एफिसुस के विश्वासी निराश हों, क्योंकि पौलुस का बंदी गृह में होना उसकी भलाई और उनकी महिमा के लिए था। कुलुसियों के पत्री 1:24 पद में वह कहता है, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, पौलुस यहां पर इस भेद को बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम तक पहुंचाता है और इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि कलीसिया ही हमारे लिए भेद है। वह चाहता है कि हम इसे जानें। मेरे प्रियो, मेरी आशा है कि आज आपने इस भेद की बातों को अवश्य ही समझ लिया है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मसीह महिमा, तेरी महिमा, मसीह महिमा, ओ सुबह को, ओ दोपहर को, ओ संध्या को, सारी रात्रि को, मसीह महिमा, मसीह महिमा हो, तेरी महिमा हो, मसीह महिमा। महिमा